ஓம் சாந்தி. ஆஜ் கே சுந்தர் மன்பாவன் கார்யக்ரம் மே சர்வப்பிரதம் பியாரி பாப் தாதா கா ஹமாரி சபி பூர்வஜ் தாதியோ கா ஔர் சாத் மே பாய் சாப் கா ஔர் ஆப் சப் ஜோ பட்டி கர்னே ஆயே ஹே சபி கா பி எக் பார் புனா பஹத் 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 தில் சே ஸ்வாகத் ஹே ஸ்வாகத் ஹே ஸ்வாகத் ஹே. வைசே பி ஆஜ் பாரத் மே ஸ்ராத்த கா லாஸ்ட் தின் தோ ஐசி மான்யதா ஹே கி ஆஜ் ஜோ பூர்வஜ ஆத்மாயே ஹே வோ சப் அப்னே அப்னே ஸ்தான் பர் வாபஸ் ஜாயேங்கே ஔர் தேவியோ கா ஆகமன் கல் சே ஹோ ஜாயேகா. ஐசி பாரத் மே மான்யதா ஹே. தோ ஐசா லக் ரஹா ஹே ஆஜ் கி சபா மே கி சபி ஹமாரி தாதியா பி வதன் சே இஸ் கார்யக்ரம் கோ தேக் ரஹே ஹே ஔர் வஹா சே ஹி சப்கோ துஆயே தே ரஹே ஹே. பாய் பஹனோ ஜேசே கி ஹம் சப் பாபா கி பச்சி ஜானதே ஹே சன்சார் மே குச்ச ஐசி மஹான் விபூதி ஹோதே ஹே ஜின்கா இன்தஜார் ஸ்வயம் பகவான் பி கர்த்தே ஹே. யூ தோ ஹம் சப் பகவான் கா இன்தஜார் கர்த்தே ஹே லேக்கின் குச்ச லோகோ கா இன்தஜார் பகவான் கோ பி ரஹதா ஹே ஔர் உன்கே லியே பிளானிங் ஸ்வயம் பகவான் வதன் சே கியா கர்த்தே ஹே. முஜே ஐசா லக்தா ஹே பாய் சாப் உன்மே சே ஏக் ஹே ஜின்கே லியே ஸ்வயம் பகவான் வதன் சே பிளானிங் கியா கர்த்தே ஹே. ஆஜ் ஹம் ஆப்கே பாய் சாப் கே முகார் பிந்து சே ஆப்கே ஜீவன் கஹானி ஸ்வயம் சுனேங்கே ஸ்வயம் சுனாயேங்கே லேக்கின் சூங்கி ஆப் மே சே குச்ச லோக் தோ பாய் ஜி சே பரிச்சித் ஹோங்கே ஹி கௌன் கௌன் பாய் ஜி கோ ஜானதே ஹே ஜரா ஹாத் உடாயே சபி ஜானதே ஹே பாய் ஜி சப் ஜானதே ஹே. ஹமாரி இஸ் பிராமண பரிவார் கி ஆப் பஹத் படி சோபா ஹே ஔர் ஹம் சப்கோ பஹத் பிரேரணா மில்தி ஹே ஆப்சே. ஆப் ஈஸ்வரி விஸ்வவித்யாலய கே காரியகாரி மஹாசச்சிவ் ஹே எஜுகேஷன் விங் கே ஆப் சேர்பர்சன் ஹே. வசித் பஹத் லம்பி ஃபெஹரிஸ்த் ஹே ஆப்கே பரிச்சய கி லேக்கின் மே சார் மே யஹி கஹனா சாஹதா ஹூ கி ஆப் பாபா கே ஐசே கோஹினூர் ஹீரா ஹே ஜோ பாப் தாதா கோ பிரத்யக்ஷ கர்னே கே லியே அப்னா ஸ்வாசோ ஸ்வாஸ் இஸ் சமய சேவா மே லகாயே ஹுவே ஹே. தோ பாய் ஜி சே மே ஜானனா சாஹதா ஹூ பாய் ஜி கி ஆப்கே பச்பன் கி ஓர் ஹம் லே ஜானா சாஹதே ஹே ஆப்கோ. ஆப் ஜ்ஞான் மே கப் ஆயே கைசே ஆயே ஔர் கஹா பர் ஆயே.
ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. சர்வப்பிரதம் ஆப் சப்கோ தன்யவாத் தேத்தா ஹூம் வதாயி தேத்தா ஹூம். ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சே ஔர் பி அன்ய ஸ்தானோ சே வோ தேவ பூமி கஹா ஜாதா ஹே ஆப் சபி பரமாத்மா கே அவதரண பூமி மே ஆயே ஹே ஆப் சப்கோ மே தில் சே ஹார்திக் ஸ்வாகத் கர்த்தா ஹூம் அபிநந்தன் கர்த்தா ஹூம். மே ஃபிர் அபி தோ தின் பஹலே மே ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் மே ஹோக்கே ஆயா ஹூம் ஔர் அன்ய ஸ்தானோ மே அபி நாக்பூர் மே பி ஹோக்கே ஆயா ஹூம். வஹாம் கோல்டன் ஜூப்ளி செலிப்ரேஷன் தா ஔர் அன்ய காரியக்ரம் தே இஸ்கே லியே ஆப் சபி இதர் ஆகர் கே இஸ் சமய மே தபஸ்யா கர்னா யோக கர்னா பாபா கா சாத்திபன் கா அனுபவ கர்னா ஔர் ஏக் செகண்ட் மே முக்தி ஔர் ஜீவன் முக்தி கா அனுபவ கர்னா ஔர் பாப் சமான் பன்கர் கே ஃபரிஸ்தா பன்கர் கே ஸ்ரேஷ்ட சங்கல்போ த்வாரா விஸ்வ கோ சாகாஷ் தேனா शक्ति देने कार्य करने के लिए आए। आप सबको मैं समस्त परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। जहाँ तक प्रश्न पूछा, मैं बाबा का 1968 सितंबर में बाबा का परिचय मिला बेंगलोर में। उस समय मुझे हिंदी थोड़ा भी नहीं आता था, अभी थोड़ा टोटा पोटा हिंदी में भी आपसे बात करता हूँ। और आज के दिन में थोड़ा हमारा क्या बोलते हैं, बाजा भी ठीक नहीं है, अभी बाजा भी पठा हुआ बाजा है। मैं 68 बेंगलोर में मेरा लौकिक जन्म पढ़ाई आदि हुआ, पढ़ाई करता था यूनिवर्सिटी में, फाइनल ईयर भी काम पढ़ रहा था। हम जो कॉलेज में जाते थे उसी रोड में ही एक छोटा सा ब्रह्म कुमारी सेश्वरी विश्वविद्यालय का शाखा थी, फर्स्ट फ्लोर, परंतु वो तो बहुत छोटा सा बिल्डिंग था, एक रूम एक छोटा सा दूसरा रूम, और उधर कोई फर्नीचर नहीं थी, सोफा नहीं था, ऑडिटोरियम नहीं था, क्लास हॉल भी उसको हम नहीं कह सकते, एंड हाउस था। परंतु मैं रोज इस रास्ते में जाने के टाइम में मैं पढ़ता था, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भैया हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, दो शब्दों का यूनिवर्सिटी है, परंतु इधर इतना लंबा नाम लिखा तो मेरे मन में प्रश्न उठता था। यूनिवर्सिटी माना बड़ा कैंपस, यूनिवर्सिटी माना बड़े बड़े कॉलेज, इतना बड़ी भवका होता है, परंतु इस ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा इसमें क्या पढ़ाते होंगे, क्या डिग्री देते होंगे, क्या कोर्स कराएंगे, क्या कोचिंग करेंगे, मेरे मन में कई दिन से वो संकल्प चलता था, क्योंकि उधर से आना उधर से जाना। परंतु एक दिन हमारा एक मित्र थे, हम दोनों काफी नजदीक थे, आपस में कोई भी कार्य करते थे, वहाँ खेल कूद करते थे, इधर मैंने बैडमिंटन खेलने के लिए इवनिंग टाइम जाते थे कोर्ट में, बैडमिंटन कोर्ट भी नजदीक था। और मैंने उसी दिन अचानक मैंने हमारे दोस्त से पूछा, इधर ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम रखता है, उसको अंदर जाकर के देखते। हम लोग दोनों गए छोटे से हॉल में, कोई सोफा नहीं था, कुर्सी नहीं था, एक दादी जिसका दादी भी नहीं जानता हूं मैं, परंतु वो योग कर रहे थे। योग भी उनकी विचित्र है, दुनिया में योग का मना आसन करना, ये करना वो करना, साइलेंस में बैठना इसको योग नहीं कहते, वो तो हो सकता है प्रार्थना, उसको कहते हैं मौन, उसको कहते हैं अलग अलग है, परंतु इसको योग का बाद में मुझे मालूम पड़ा, वो दादी हृदय पुष्पा दादी के नाम से वो पहचानते हैं, शायद आप सबको मालूम है चंद्रमणि दादी की लौकिक बहन थी, वो लौकिक चंद्रमणि दादी से थोड़े बड़े बहन थे वो, और बाद में वो परिचय हुआ। वो इनिशिएट अर्थात सबको योग कराते थे, दृष्टि दे रहे थे, मेरे को दृष्टि योग भी पता नहीं, वह योग है वन भी योग है, परंतु थैंक यू। मैं बैठ गया, रेड लाइट तो ऑन था, 8-10 भाई बहने बैठे थे, वो इस तरफ देख रहे हैं उनके बेंजी की तरफ, वो बेंजी सबको दृष्टि दे रहे, मेरे तरफ ही देखे, उसके चेहरे पर बहुत सुंदर पावर मैंने उस घड़ी उस सेकंड में अनुभव किया, जैसे आप सभी ने अव्यक्त बाबा आते हैं तो कैसे वातावरण वायुमंडल चेहरा दिखाई देता है, ऐसे मुझे भी उसकी चेहरा देखते से बहुत लाल लाल चेहरा और खुशी से आनंद से भरपूर था चेहरे पर। और उसके संकल्प क्या कहते हैं मालूम नहीं है, परंतु संकल्प बाबा ने कहते ना, संकल्प से सृष्टि, दृष्टि से सृष्टि, बहुत बार बाबा ने मुरली में सुना है। हम उसका यदि एग्जाम्पल कहो, एक प्रोडक्ट करो, एक क्रिएशन कहो, मैं उनकी संकल्पों से वह उस समय में उसकी दृष्टि से मेरा जीवन का नया सवेरा आ गया, नया पौधा उन्होंने जागृत किया, नया बीज अंकुरित कर दिया इस शिक्षा में। उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में रेड लाइट ऑफ करके व्हाइट लाइट किया, सभी ने एक दो को, मैं भी एक दो को देख रहा हूँ ऐसा, वो भी मेरे तरफ से देख रहे हैं। बाद में एक भाई है, उसका नाम मरियप्पा भाई, वो HMT में जनरल मैनेजर के स्तर पर सेवा करते थे और ईश्वरी विश्वविद्यालय का वो विद्यार्थी भी थे, और उनका परिवार सहित उन्होंने, अभी भी उनके परिवार के कुछ ज्ञान में है, अभी तो वो कुल अभ्यक्त हो गए हैं कुछ समय पहले, उन्होंने रेड लाइट ऑफ करने के बाद में मुझे आकर के बगल के कमरे में लेके गया, आप कहाँ से आए, क्या करते आते थे। मैंने बोला मैं तो नज़दीक इधर ही बगल में हमारा लौकिक घर है, मैं कॉलेज विद्यार्थी हूँ और मैं रोज इस बोर्ड को देखता हूँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय, परंतु इधर ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखते हैं, नॉर्मली विश्वविद्यालय माना बड़े कैंपस, बड़े बुक्स, बड़े डिग्री आदि आदि, इधर कुछ दिखता नहीं, एक छोटे से कमरे में 8-10 भाई बहने हैं और आपने इतनी बड़े बोर्ड लगाया, क्या कराते हैं, क्या शिक्षा देते। उन्होंने कहा आपको 7 दिन, आप इसको जो कोर्स दिया जाता है उसका 7 दिन का, आप आएंगे तो 1-1 घंटा डेली। मैंने बोला अच्छी बात है, मैंने हमारा दोस्त से पूछा चलो आज ही शुरू कर देते, हमने भूल ही गया खेलने के लिए जाना है, परंतु वो पूछा उसको हम आज शुरू करेंगे, हाँ शुरू कर देंगे। उन्होंने आत्मा के बारे में उस दिन जो भी शिक्षा ज्ञान जो सुनाया मेरे को, ऐसा उनको जो सुनते 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 मेरे को एक रियलाइजेशन हो रहा था, बाबा कहते ना आपकी बातों में रियलाइजेशन होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा था, इसका मतलब हमारा शरीर ये टेम्पररी है, इसको छोड़ने के बाद में मैं जिंदा रहेगा, इसका मतलब पूर्व जन्म में भी कुछ तो होगा, ऐसी ऐसी बातें मेरे माइंड में आया। और उसका एक्सटेंशन बाद में उन्होंने कोर्स पूरा करने के बाद मेरे सचमुच में आत्मा हूँ, ये सारी आत्मा का जो आप सभी सुनाते हैं उसका अनुभव हुआ। घर में गए रात में 12 बजे तक मेरे को नींद नहीं आया, मैंने यही मंथन चल रहा था, यही चिंतन चल रहा था, साथ साथ में इसका मतलब क्या, मेरे पूर्व जन्म में क्या था, भविष्य में क्या होंगी, इसका मतलब ये शरीर छूट जाने के बाद में भी जिंदा रहेंगे और पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म होगा तो पूर्व जन्म भी होना चाहिए, देन पूर्व जन्म है तो पुनर्जन्म भी होना चाहिए, देन इसका मतलब ये साइकिल में इस बर्थ एंड डेथ की प्रक्रिया में हम आएंगे, ऐसा अनुभव अपने आप को होने लगे। उसके बाद में नेक्स्ट डे गया, नेक्स्ट डे तो उन्होंने परमात्मा का परिचय कराया, परमात्मा का परिचय, मैं लौकिक में साउथ में लिंगायत एक कम्युनिटी है, एक वर्ग है, जो भी जाति भी कहो अलग बात है, उस परंपरा से जुड़ा हुआ, उस शिक्षा से जुड़ा हुआ, उस संस्कार से जुड़ा हुआ इतना है, क्योंकि लिंगायत माना मुझे 1 मास पहले ही उन्होंने दीक्षा दिया गया था, दीक्षा माना रोज लिंगायत लिंग को शिवलिंग को गले में लगाना है, उसको एक सिल्वर बॉक्स व एक अच्छे चंदन की बॉक्स होता है, उसको गले में धागा से बांध के लगाते हैं, डेली 2 टाइम पूजा करके प्रसाद भोजन को हम प्रसाद मानते हैं लेना, ये इस परंपरा को रेगुलर करना। अभी पहले कॉलेज स्टूडेंट था, अभी 1 मास के बाद में 2-3 मास के बाद में पूरा हो जाएगा, तब हमारा ग्रैंडफादर ने हमको ये दीक्षा देता है, हमारे लोग क्या नॉर्मल है, ब्राह्मण लोग जिनिवार डालते हैं, हम लोग शिवदार शिव का पूजा करने। बाद में मैंने बोला हमारा ही ज्ञान सुना रहे, बिकॉज आई बिलीव इन शिवा, पूजा करते थे घर में, हमारे परिवार में ये सभी ये परंपरा पहले से ही था, हर बच्चे 18 साल के बाद में उसको दीक्षा देना, हर घर में बहनों भाइयों पूजा करना, और इस प्रक्रिया से मैं पहले ही जुड़ा हुआ था। साथ में हमारा घर में बहुत साधु संत लोग आते थे, जगत गुरु के नाम से लोग, महात्मा लोग, हर 1-2 दिन में कोई ना कोई आते थे, पूजा आदि करते थे, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड था, इसके लिए मेरे को अच्छा लगा, ये तो हमारा ही ज्ञान सुना रहा है, हमारा ये बात सुना रहे, हमारा बिलीव कोई इन्होंने विद अथॉरिटी विद क्लैरिटी विद पर्पस बोले ये बता रहा है। मैंने बोला ये तो अपने ही नॉलेज समझ करके उसी दिन भी अच्छा एंजॉय किया। तीसरा दिन भी उन्होंने और भी बातें सृष्टि दर्शन के बारे में, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, शिवा शंकर अलग है आदि, जो कोर्स से नॉर्मली आप सब सुनाते हो वो सुने। तब मेरे को जो ब्रह्मा बाबा को उधर एक फेस भी कहा था, ब्रह्मा विष्णु शंकर आप सभी त्रिमूर्ति पिक्चर में आप जानते हैं, ब्रह्मा को तो एक व्यक्ति दिखा, विष्णु तो विष्णु है, शंकर तो तपस्वी है, ब्रह्मा तो एक सामान्य मनुष्य आदमी से दिखा रहा। मैंने बोला ये तो मेरे ग्रैंडफादर जैसा लगता है, ब्रह्मा एक हमारा ग्रैंडफादर। ब्रह्मा का हम लोगों का बिलीफ है पंचमुखी ब्रह्म, चतुर्मुखी ब्रह्म, बुजुर्ग ब्रह्म, दाढ़ी हुआ ब्रह्म, यही बातें हम लोग मानते आए थे। परंतु ये व्यक्ति एक हमारा ग्रैंडफादर, हमारा ग्रैंडफादर भी बहुत लंबे थे, हाइट था, टर्बन वगैरह पहनता था, व्हाइट मूछ वगैरह था, सभी बहुत, इसी कारण से ये तो हमारा ग्रैंडफादर जैसा लगता है, हम कैसे हो सकता है ये ब्रह्म। उसके लंबे चौड़े थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ, आर्ग्यूमेंट के बाद में मैं बोला छोड़ो ये ब्रह्म है हुआ नहीं है, परंतु शिव बाबा तो है, शिव बाबा शब्द तो अभी हम ये प्रयोग करते उन दिनों में वो नहीं करते प्रयोग, मैंने शिव के बारे में बता रहे इसकी बड़ी बात। उसके बाद में उन्होंने और भी आगे, परमात्मा इसके तन में प्रवेश होता है ये बात देखा, ये बात मेरे को जचा नहीं है। इस देश में बहुत बड़े बड़े संत है, पूर्व जो भी है अलग है, और वर्तमान समय में उनकी प्रति बहुत श्रद्धा है, मान है, सम्मान है, उनकी विधि है, इन सबको छोड़कर के एक साधारण मनुष्य को उनके तन में परमात्मा प्रवेश करता है, ऐसी औचित्य क्या था, ऐसी विशेष क्या था इसके अंदर, इतने बड़े बड़े संतों को छोड़कर का। उसकी भी बहुत लंबे चौड़े आर्ग्यूमेंट हुआ, चर्चा हुए, परंतु फिर भी मैंने बोला परमात्मा का तीन कर्तव्य के बारे बताया, वो तो मेरे को थोड़ा थोड़ा उसको निश्चय हो सकता है ऐसा। तीसरे दिन भी जाने के बाद में उन्होंने योग के बारे में बताया, कैसे याद करने, जो कैसेट है ना पहले तो अभी भी है, वो बड़ा कैसेट लगाया रेड लाइट ऑन करके, मैं थोड़े टाइम के लिए भी उधर बैठा, ऐसा मेरे को विचित्र अनुभव हुआ, जैसे कोई टेलीफोन से अननोन व्यक्ति हमारे से बात करता है, ऐसा मेरे से बात कर रहा है, और उसका इतनी डीप साइलेंस में मेरे साथ, हम लोग कहते हैं ना साइलेंस में परमात्मा आपसे बात करता है, परंतु वो अनुभव मैंने उसी दिन किया, तब मेरे को एक निश्चय हुआ इधर आना वर्थ है, इधर ज्ञान सुनना वर्थ है, वह इधर कोई विशेष अनुभव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। ठीक है, तो एक
सुंदर इस तरह से आपका लौकिक से अलौकिक जन्म हुआ, और हम सब समझ सकते हैं कि उस समय कई बातें होती है, कुछ चीजें जल्दी समझ में आती है, कुछ चीजें नहीं आती है, लंबी कहानी होगी भाई जी, लेकिन आपसे बहुत कुछ जानना है आज हमें। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ भाई जी कि आपको कर्नाटक में इस तरह से ज्ञान मिला, समर्पित आप कैसे हुए और समर्पित जीवन जीना है, ये प्रेरणा आपको कब मिली?
मैं उसमें कोर्स पूरा करने के बाद में जी, एक मास के बाद में मैं माउंट आबू आया, तब तो बाबा थे ब्रह्मा बाबा भी, मेरे को निश्चय करना था ब्रह्मा बाबा के अंदर कैसा शिव बाबा होता, जिन वो व्यक्ति कैसे हो। मेरा भाग्य मैं आते हुए बाबा आंगन में जो है, अभी तो आंगन में तो बहुत क्या बोलते हैं फ्लोरिंग वगैरह बना, उन दिनों में फ्लोरिंग नहीं था, मट्टी का ही था, और ट्रेनिंग जो हिस्ट्री हॉल है वो एक ही हॉल था, ट्रेनिंग सेक्शन में आधा बाधा कंस्ट्रक्शन था और भी आधा ऐसा ही थे, और भी बहुत बिल्डिंग उधर नहीं था, परंतु बाबा को मैं ऐसे ही करीब 20-25 फुट दूर से ही मैंने देखा, बाबा का जैसे सर्च लाइट मिल रहा हो। बाबा ने कहा ना बहुत बार दृष्टि से सृष्टि, उसको देखते मेरे के अंदर इतनी खुशी का अनुभव किया, मैं जाकर के बाबा का कहला, हमारा पार्टी साथ में थे, हमारा दादी थे, नहीं 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 अभी तो नहीं जाओ, बाद में स्नान पान करके, क्योंकि हम ट्रेन में आए थे, ट्रेन में आए तो स्नान भी नहीं किया, फिर भी इन्होंने रोका। परंतु मुझे उस घड़ी का जो आनंद है, अनुभव है, वो शब्दों से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। परंतु वो अनुभव मेरे जीवन का एक पलटने वाला, घड़ी कहो दिन कहो। उसके बाद में लगभग हम 6 दिन इधर रहे। 6 दिन के अंदर मुझे उधर हिस्ट्री हॉल में जाकर के बैठता था, बहुत खुशी होता था। ऐसा लगा सचमुच मेरे को अपना जो अलौकिक पिता है, पारलौकिक पिता है, इन दोनों से बहुत वरदान मिल रहा है, खुशी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात खुशी, ये अनुभव आज भी है, कल भी रहेगा, जन्म जन्मांतर का रहेगा। ये ज्ञान है, वो तो बात बाद में समझ में आएगा। इसके लिए वापस गया, क्योंकि मुझे फाइनल ईयर एग्जामिनेशन देना, पढ़ना, मैं लौकिक में किसी को बोला ही नहीं था। मैं एक्सकर्शन जा रहे कॉलेज में दूसरा एक हफ्ते के लिए, किधर भी जा रहे वो भी नहीं बताया, क्योंकि बोलेंगे तो कई बातें उठ जाते हैं। इसके लिए कहते जाओ, मैं बिगिनिंग टू माउंट अबू, बिगिनिंग टू दिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय। देन धीरे धीरे मुझे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बातें, बहुत बातें सुना, पुनर्जन्म के बारे में, भविष्य के बारे में, स्त्री के बारे में, सृष्टि दर्शन के बारे में, उसके बाद में कर्म दर्शन के बाद में आ जाए। तब तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ विशेष ज्ञान प्राप्ति हो रहा है और रियलाइजेशन हो रहा है, ये अनुभव किया जा।
तो आप साकार बाबा से मिले और इस तरह से आपका प्रथम बार मधुबन आना हुआ और बाप दादा से मिलना हुआ। मैं आगे जानना चाह रहा था भाई जी, इस तरह से आप बाबा से मिल करके गए, फिर वापस आप समर्पित कौन से वर्ष में हुए?
इसके लगभग 3 साल के बाद में, 1970 में मेरे को समर्पित माना। क्लास में रेगुलर आना जाना वो तो था ही। पहले तो शाम की टाइम होता था, बाद में सुबह टाइम में 5 बजे का मुरली होता था। प्राइम मिनिस्टर अबू रोड में आने का प्रोग्राम बन रहा है 30 तारीख, और हो सकता है तो हम लोग प्रयत्नशील है, शांतिवन में कुछ समय के लिए बीतने के लिए आएंगे, उसके बारे में थोड़ा बात हो रहा है।
हम सब समझ सकते हैं भाई जी के पास बहुत सारे कारोबार यज्ञ के रहते हैं, और इसीलिए क्लास में समय निकालने के बावजूद भी लोगों से जुड़े रहना पड़ता है। भाई जी, मैं
गुड न्यूज ये है
जी,
पर अभी तो सर्वे हो रहे, प्राइम मिनिस्टर अबू रोड में आकर के मानपुर हेलीकॉप्टर उतर के
जी,
और उसके बाद में अंबाजी जा रहे हैं
जी,
रेलवे मिनिस्टर और अन्य कुछ मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि उधर नया लाइन जोड़ रहे हैं अंबाजी टू अबू रोड
जी,
उसके फाउंडेशन के लिए आ रहे हैं। अभी तो कल ये सारा समाचार मिला है, अभी मैं जा करके हमारा प्रोग्राम भी उनके साथ जुड़वा करके करना पड़ेगा, बात यह है।
जी, हम सबका शुभ संकल्प है भाई साहब स्पेस से कि ये कार्यक्रम बहुत सफल हो, और जो आपका संकल्प है वो बाबा के घर में जरूर पूरा हो। इस तरह से आपके जीवन की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, आप ज्ञान में चले, बाबा से मिले, समर्पित हुए। आपसे मैं जानना चाहता हूँ भाई जी कि आप काफी वर्षों से मधुबन में, ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इस प्रोग्राम को आप सहज तरीके से करते हैं, क्या क्या चुनौती आपके सामने आती है इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करने में?
छोटा काम करो, बड़ा काम करो, समय उतना ही जाता है, और हिम्मत वही हिम्मत है। एक विश्वास बड़ी चीज होती है, अपने आप में विश्वास, ईश्वरी सेवा में विश्वास। बाबा ने पहले ही कहा हुआ, सपरा तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये बातें बाबा ने जो उस बात को गाइडलाइन के रूप में, एक विजय के रूप में, एक सक्सेस के रूप में हम बुद्धि में ठाल देते हैं, हमारा काम सहज हो जाएगा। मैंने अभी तक अनुभव, क्योंकि एक बार मैं माउंट अबू आकर के रहने का विचार नहीं था, बाला गलत सेवा स्थान काफी 3-4 साल के अंतराल में बाबा ने कहता था घर घर में क्लास होना चाहिए, गांव गांव में सेंटर खोलेगा, देश विदेशों में सेंटर को। ये तो उन दिनों में सुनते थे बाबा का मुरली में, और साथ साथ में बाबा ये भी कहता था कुछ ऐसे बच्चे सेवा करने के बजाय दो रोटी के लिए सारा जिंदगी बिता देते। बाबा बैठा है, दाल रोटी खिलाएगा, ये बात मेरे को दिमाग में जज हो गया। ये तो सही है, बाबा दो दो रोटी कमाने के लिए, वह कुछ साधन के लिए, कुछ सुविधा के लिए, घर बनाने के लिए, वह कुछ गाड़ी खरीद करने, इन चीजों के लिए हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। ये अनुभव मैं यहां आने के बाद में स्पष्ट अनुभव किया। बाद में संदेश देना ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय संदेश घर घर में पहुंचना। उसी बेसिस पर मैंने रेगुलर क्लास में आने का भी साथ साथ में एक समर्पित रूप में सेवा करा। 1970 तक हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, 1969 में पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ, हमारा डिग्री हो गई, और 69 एंड 70 के बीच में सर्वज्ञ एजुकेशन सोसाइटी के नाम से हमने एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया। उस इंस्टीट्यूशन में टाइपिंग शॉर्ट हैंड सिखाने का काम और कुछ कोचिंग की भी था। उसके बाद में मेरा लौकिक बड़ा भाई अभी थोड़ा थोड़ा ज्ञान में है, उनको सौंप करके मैंने पूरा ईश्वरीय सेवा में लग गया, परंतु बेंगलुरु में ही रहा। बेंगलुरु में रहते ही तो कई कार्यक्रम आयोजन करते रहे, बड़े बड़े प्रोग्राम भी आयोजन करते रहे, उन दिनों में बहुत छोटा भी बड़ा ही है उसके हिसाब से। और एक बार 78 में बेंगलुरु में विधानसौधा बैंक्वेट हॉल में एक कॉन्फ्रेंस किया था, द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड करके। उसी टाइम में सबसे बड़ा हमारा भाग्य था, उसी टाइम में दादी प्रकाश मणि जी भी आए, जगदीश जी भी आए, निर्वेर भाई भी आए, अन्य काफी भाई बहने हैं। विधानसभा बैंक्वेट हॉल माने एक बहुत बड़े गवर्नमेंट का, जैसे पार्लियामेंट हाउस है ऐसे विधानसभा हर एक स्टेट में, उसके अंदर एक बड़ा हॉल था। उसका लेने में भी बहुत हिस्ट्री है। मैं पहले तो हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस के बारे में बना करके फोल्डर लेकर के वहां तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी के पास मिलने के लिए गए। उसने इन्विटेशन और लेटर देखा, भैया ये तो हम सबको नहीं दे सकते, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल नहीं दे सकते, ऐसा वाला। मैंने उनके बहुत अच्छे सज्जन IAS ऑफिसर सीनियर, मैंने सर इफ आपको धार्मिक कार्यों को नहीं दे सकते, इसका मतलब इधर जो कार्य होते हैं वो अधर्म, इफ इट इज नॉट मेंट फॉर अ रिलीजियस पर्पज देन इट मीन्स फॉर इरिलीजियस पर्पज। उसको एक शब्द जैसा लगा, उसको एक लड़का इतनी बात बता रहा है, परंतु उसके अंदर मैंने एक दैवी गुण देखा। उसने नेगेटिव रूप में नहीं लिया, क्रोधित नहीं हुआ, इंसल्ट नहीं हुआ उसको, उसने मुस्कुराते हुए है, कोई कानून नहीं आपको देने के लिए, आप दूसरी दूसरी जगह, उन्होंने कुछ सुझाव दिया, एक टाउन हॉल है बहुत बड़ा है, रविंद्र कला मंच है वो भी बड़ा है, कम से कम उधर 1000-1000 लोगों को बैठ, हम उन दिनों में सोचता था 1000 नहीं कम से कम 5000 आवे, ऐसा कुछ प्रोग्राम कर। सर इतना बड़ा हॉल तो सारे बेंगलुरु में नहीं, यदि है तो आप टाउन हॉल और रविंद्र कला क्षेत्र बुक करने के लिए आपके पास आने का क्या दरकार है, जिस दिन डेट काली है उसी दिन पैसा भरो, ले लो उसको बनी बनाओ। उसने बोला हमारा अधिकार से बाहर है। मैंने बोला अधिकार से बाहर माना क्या, अच्छे काम करने के लिए अधिकार की आवश्यकता नहीं है, सच्चा काम के लिए तो सरकार है, सच्चा काम के लिए चीफ सेक्रेटरी, अच्छा काम के लिए सरकार है, ये भी अच्छे काम नहीं कर सकते तो क्या होगा। बाद में उसने मुस्कुराते हुए आप चीफ मिनिस्टर से मिलो, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल रिकमेंड बट आई कैनॉट गिव यू। मैंने बोला ठीक है, चीफ मिनिस्टर के पास फाइल भेज दीजिए, वी विल डू। उन दिनों में देवराज हरस के नाम से चीफ मिनिस्टर था, और उसका भी लंबी छोटी सी बात है। बाद में दूसरा 3-4 दिन के बाद में मैं उसे मिला, उसने सैंक्शन किया। कैसे सैंक्शन किया, उसकी बहुत अच्छे रिलेटिव एक नोन व्यक्ति उनका परिचय था, वो हमारे संस्था से भी कांटेक्ट रखा था, वॉज नॉट ए स्टूडेंट बट ही हैड अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस अबाउट दी दादी एंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन इतना नहीं था बड़ा, परंतु फिर भी उन्होंने उनकी उनकी घर में चीफ मिनिस्टर आने वाला था कुछ पूजा आदि करने के लिए. उन्होंने टाइम वगैरह बता दिया, दिन हम जा करके मिले. उसके बाद में उसने बोला फाइल कहाँ है. मैंने बोला आपके ऑफिस में है. और हम बोला कल 10:30 बजे आओ, आई विल लुक इन टू दैट. हम गए, हम जाते हुए पहले उनके पास ही था टेबल पर, उन्होंने हेल्प देम कर दिया, इसको सहयोग करो ऐसा करके लिख दिया. वापस पहला है हमको मिला, देन कॉन्फ्रेंस तैयारी किया. लोगों को आश्चर्य लगा, दादी आदि इतने छोटे आदमी, छोटा एक यंग बॉय है उस समय, इतना बड़ा देख करके हैरान हो गया दादी भी. और इसके बाद में अलग हिस्ट्री है. कुछ समय के बाद में माउंट आबू में ऐसा बड़ा कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्लानिंग किया था, तब तो ओम शांति भवन भी नहीं था, म्यूजियम तैयार हुआ था. म्यूजियम के आंगन भी अभी भी आंगन है, और कुछ कंस्ट्रक्शन अभी हुआ है. वहां एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए सोचा. अब उधर आकर के निर्वेद जी को मदद किया, वो भी अच्छा सक्सेस हुआ. आई यूज टू टेक केयर ऑफ द ऑफिस वर्क. देन नेक्स्ट बेंगलुरु से ऊपर आने के बाद में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्लान किया था, उसका नाम यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस. आप सब जानते हैं 1983 से हम लोग यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस लगभग 5 कॉन्फ्रेंसेस कंटिन्यूअसली उसी नाम से हर साल में करते हैं. फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में आकर के निर्वेद जी ने कहा आप आकर के मेरे मददगार बनो, थोड़ा मदद करो. मैंने बोला 6 मास के लिए तो ठीक है, मैं आता हूँ करके आए. वी कंडक्टर द कॉन्फ्रेंस. उस समय जगदीश जी भी थे, रमेश भाई तो जैसे बॉम्बे से आना जाना, ब्रिजमोन दिल्ली में था, निर्वेद जी वॉज हियर ओनली. देन आई सपोर्टेड हिम इन ऑल द एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मैनेजिंग द ऑफिस वर्क. उसके बाद में कॉन्फ्रेंस सक्सेस हुआ. डॉक्टर रॉबर्ट मुलर आए, मैडम सादात आए, मैडम इजिप्ट का जो पहले प्रेसिडेंट था सादात, उनकी वाइफ थे वो, उनको असासिनेशन कर दिया था उस देश में कुछ लोग, और भी यूनाइटेड नेशन के कुछ ऑफिशियल, भारत सरकार के मंत्री कुछ लोग आए, और मीडिया को हम लोग, मीडिया उन दिनों में पैसा देकर के टिकट देकर के बुलाए थे, 124 मीडिया पर्सन आए. और ये सारी बात होकर के बहुत अच्छा फर्स्ट मधुबन में बड़ा कार्यक्रम उन दिनों के हिसाब से हो गया. बाद में मेरे को तो वापस जाने के लिए, उन दिनों में क्या था, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में कॉन्फ्रेंस, बहुत ठंड होता था, अभी तो अलग है वायुमंडल, ठंडी में कितना भी कपड़ा पहनो मुश्किल होता है. हम 4 बजे ऑफिस में जाता था कभी कभी, बहुत ठंड होता था उन दिनों में. कंप्यूटर नहीं था, इलेक्ट्रिकल वो भी नहीं था, कई बात है. बाद में मैंने दादी के पास गया, दादी मैं बेंगलोर जाना चाहती. दादी ने बोला क्यों, कितने दिन के लिए. मैंने बोला कितने दिन की बात है, हमारा वापस बेंगलोर जाना था. दादी ने मेरे को ऐसा देखा, दृष्टि दिया. दृष्टि देने के बाद में क्यों बोले, दादी यहाँ तो बाबा भी अच्छा लगता है, दादी भी अच्छा लगता है, परंतु यहाँ का ठंडी अच्छा नहीं लगता. हम तो साउथ में स्वेटर भी नहीं पहनते हैं, और परंतु दादी मेरे को सब कुछ दिया था. फिर भी दादी ने बोला, हमारे दादी की आयु में कितने फर्क है. दादी ने कहा, दादी कभी ठंडी में मैं बॉम्बे जाऊं, कलकत्ता जाऊं, अन्य स्थानों पर जाऊं, कभी दादी नहीं सोचती है. दादी इतने बड़े उम्र में भी इधर रह करके सेवा करती है. वो बात मेरे दिमाग में जैच हुआ, सही बात है, दादी इतनी बड़ी उम्र में भी यहां ठंडी में रह करके सेवा करती है. और एक दिन भी हम दादी की क्लास मिस नहीं करते थे. एक दिन भी दादी को मिस होता तो हम लोगों को दादी का क्या हुआ, क्या हुआ, आज दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी बात. मतलब दादी ने उस समय बोला मेरे को ठंडी उस दिन भाग गए. मना, हमने संकल्प किया हमको इधर रहना, ठीक है, ये ठंडी ठंडी का डर के नहीं जाना. अभी तो ठंडी में भी सेवा करता है, बहुत ठंडी में भी सेवा करता है. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड लिविंग इन मधुबन. आगे का हिस्ट्री अलग है.
जी 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 भाई जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न है भाई जी. आप इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, हम अपने अपने डिपार्टमेंट में भी देखते हैं, कुछ ऊपर नीचे होता है, सेंटर में भी सेवा चलती है, आपको इतने प्रोग्राम करते हैं थोड़ा टेंशन होता है भाई?
मेरे को टेंशन नहीं होता है, एंग्जाइटी होता है। टेंशन और एंग्जाइटी में फर्क है
जी।
टेंशन तो घबराना, टेंशन माना व्यर्थ बातें आना, व्यर्थ संकल्प करना, व दूसरों की सुनी सुनाई बातों में इच्छा रख करके अपने बुद्धि को भ्रष्ट करना, ये सारी मेरे को टेंशन नहीं, कभी भी नहीं हुआ। एंग्जाइटी होता था, ये कैसे होगा
जी,
कब होगा, परंतु फिर भी इमिडिएटली बाबा का महावाक्य, बाबा ने कहा विजय आपका जल में सीधा, वो ये तो भी अच्छा, नहीं हो ये तो भी बाबा बैठा हुआ, ऐसा हिम्मत रखकर आई नेवर लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस इन माय सेल्फ एंड इन द सिस्टम एंड इन बाबा टीचिंग। वो कॉन्फिडेंस ही मुझे सक्सेस की बहुत
जी भाई जी। इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा और प्रश्न मेरे मन में आ रहा था भाई जी, आप जब ज्ञान में आए और उस समय आप ज्ञान समझ में आया, मधुबन आए, आज हम देखते हैं यज्ञ में आपकी बहुत बड़ी भूमिका सेवा के क्षेत्र में, आपने कभी सोचा था बाबा इतना सेवा आपसे कराएगा?
मैंने कभी नहीं सोचा था
जी,
परंतु नेवर लॉस्ट एनी अपॉर्चुनिटी। ईश्वरी सेवा करने के लिए कोई भी किसी टाइम में भी कुछ देते हैं। मैं एक गांठ बांध के रखा हूं, ना नहीं करना
जी,
अनलेस यज्ञ की कोई विरोधात्मक काम है और कोई गलत काम है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करना। आई ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग्स। और अच्छी काम के लिए हमारा पूरा समय देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, और बड़ों से इंटरेक्ट करना चाहिए, और छोटों को भी मदद करना चाहिए। ये बातें मेरे सीरियसली कंसर्न, क्योंकि बाबा वही काम करते, दादी भी वही काम करते थे, और हमारा भाग्य था कोई भी बातें छोटी बड़ी फाइनेंस दिस एंड दैट, हमारा डेली दादी मिलती थी, विश टू मीट इधर अंगड़ में मिलते थे, पवन का ऑफिस में मिलते थे, ऑफिस भी हमने देखा होगा बहुत छोटा सा ऑफिस, जहाँ यीशुबेन बैठते थे वहाँ विश्व रतन दादा बैठता था, वहाँ दादी भी बैठते थे, छोटा सा पुराना बिल्डिंग में। मैं डेली शाम के टाइम में जा करके दादी से मिलता था और कुछ शेयर करते थे, और उसके अनुसार कारोबार में बहुत सहयोग मदद होता था
जी भाई जी।
इन शॉर्ट
जी, किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए भाई साहब टीम वर्क की जरूरत होती है। हमने देखा आपका अपना टीम बहुत सुंदर, पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में आप मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम के लिए आप सबसे राय लेते हैं, और सबकी योग्यता को आप यूज करते हैं। कैसे आप सबकी इस तरह से योग्यता को आप बाबा के कार्य में लगाते हैं?
मैंने एक बात को देखा, जिन्होंने अपना जीवन को बाबा को समर्पित किया वो सब सेवाधारी लोग हैं
जी।
सब अपने स्वार्थ को छोड़कर के जीवनोपाय के लिए इधर नहीं आए, परंतु सेवा के लिए आए। उनको भी सेवा में माध्यम होना चाहिए। सेवा एक हमारा खुद को भाग्य बनाता है, यूनिटी को भी बनाता है, और शक्ति प्रदर्शन भी होता है, और साथ साथ में उसको अपने आप को भी खुशी होता है। जो अपने खुशी के लिए भी हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु खुशी के लिए दूसरों को दुख नहीं देना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को टांग खींचना, अपने बड़ापन दिखाने के लिए कुछ अन्य चीजों को अपनाना, ये सभी बाबा ने हमको इनसे मुक्त रखा है
जी।
इसी कारण मेरे पास जो समय है मैं इसको जुडिशियसली, ऑनेस्टली, सिंसियरली ईश्वरी सेवा का यूज करता हूं। उसी कारण से मेरे को सभी का सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, हाजी मिलता है, और अच्छे कार्य वो कुछ भी कार्य, छोटे बड़े काम भी मैं बोलता हूँ हमारा भाई बहने हाजी पाठ बजा, उसका श्रेय मुझे बाबा ने, दादी ने ऐसी शिक्षा दिया, वरदान दिया, वो काम है
जी। जी भाई जी, कई बार हमने देखा भाई साहब जो अभी पिछले दिनों कुछ वर्ष पूर्व अपने यज्ञ का, दादी जी का अपने 100 वर्ष का मनाया था, जानकी दादी जी का, पूरे भारत वर्ष से, विदेश से कई वीआईपी आए थे। इसके अलावा भी कई प्रोग्राम में जो वीआईपी आते हैं वो आपके चुंबकीय आकर्षण से बहुत बंधते हैं। क्या आप ईश्वरी जादू करते हैं कि वो जाने के बाद भी आपको याद करते हैं और बाबा के बन जाते हैं?
और एक बात मैं सुनाता हूं
जी।
मैं 1983 में एक बड़ा मेला हुआ था दिल्ली में। उन दिनों में दिल्ली में जाकर के कम से कम एक मास रह करके सेवा किया। उसका चलो अलग हिस्ट्री है। मधुबन में जब भी हम लोग कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम करते हैं तो पहले तो इंटरेक्ट दादी के साथ हूँ। निर्भय जी तो हमारा ही है, उनका मैं एक क्या कहूँ, छोटा भाई बड़ा भाई का बीच में एक मधुर स्नेह है, संवाद है और सहयोग है, शुभ भावना है, उसी कारण से मेरे को ये सभी मिलता है। दूसरा जो है, मधुबन में बाहर से ही गेस्ट आना पड़ता है। मधुबन में तो इधर कोई प्लांट नहीं लगा, परंतु मधुबन की भूमि में बाबा का एक आकर्षण है और साथ साथ में योग है। हमको अभी तक जितने भी VIPs VVIPs में निमित्त बना हूं, इन सबका किसी न किसी रूप में बाबा से जोड़ते हैं, बाबा की बातें सुनाते हैं। इसके लिए कई वरदान मुझे मिला है। एक वरदान सुनाता हूं। हमने एक बार बड़ा प्रोग्राम करके दादी को भी ले जा करके बेंगलोर में काम करके आए थे और भी अन्य स्थानों पर भी जाते। बाबा ओम शांति भवन में अव्यक्त बाबा तब तक और बहुत चेंज हुई इसलिए अव्यक्त बाबा से मिल रहे थे। दादी ने बुला करके मेरे को बाबा के सामने बिठाए और बाबा को दादी ने बोली, ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे VIP को लेके आते हैं, गवर्नर मिनिस्टर्स और अन्य लोग भी अलग अलग प्रोफेशन का। बाबा ने ऐसा दृष्टि दिया देखकर, इसको VIP का नाक और कान पकड़ने वाला, नाक और कान मना उनको कैसे कन्विंस करना, कैसे उसको यूज करना, कैसे उनको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्य को प्रस्तुत करना। एक तरफ बाबा ने मुझे एक वरदान दिया, आज दिन तक उस वरदान मुझे काम में आ रहा है। आप तो दादी जी के सेंटेनरी सेलिब्रेशन के बारे में पूछा, सेंटेनरी सेलिब्रेशन दादी ने बॉम्बे में किया, दिल्ली में किया, अन्य स्थानों पर किया, परंतु वो सभी किसका था, दादी का 100 साल हो गया, इसके लिए दादी को गिफ्ट दे दे, कोई सिल्वर दिया, कोई गोल्ड दिया, कोई पैसा दिया कुछ। मेरे मन में तो ये तो सेलिब्रेशन नहीं हुआ, ये बर्थडे नहीं हुआ, ये तो सामग्रियों का संग्रह करना हुआ है। पैसा मेरे ध्यान की दादी इतने वर्ल्ड में जाकर के बाबा का संदेश दे करके लंदन में ब्रह्म वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी नाम से ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में है, इट इज अ वंडरफुल थिंग है। और भी बहुत स्थानों में, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे रिट्रीट सेंटर हो, चाहे ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस हो, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बगल में जो किया, ये सारी वंडरफुल है। मैंने दादी को जाकर के रिक्वेस्ट किया, दादी आपका सेंटिनरी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। दुनिया में भी लोग बर्थडे मनाते हैं, तो बहुत छोटे छोटे स्वामी जी का बर्थडे मनाते, भव का हमने देखा, अभी भी देखते हैं कहने। मैं दादी को कहा, दादी ने बोला, आप जानकी गुलजार दादी से बात करो। मैं गुलजार दादी से बात किया, गुलजार दादी ने तो अच्छी बात है, बनाओ प्रोग्राम। और मैंने गुलजार दादी और बड़ी दादी जानकी दादी इन दोनों को नाम से एक फोल्डर बनाया, सब कुछ किया, दादी से दिखाया, न्यूयॉर्क में मोहिनी बहन जयंती बहन आदि को दिखाया, इसमें कोई करेक्शन हो, कुछ भी सुझाव हो तो देना। उन्होंने हाँ कर दिया। कुछ दिन के बाद में किसको क्या लगा पता नहीं है, उन्होंने दादी को जाकर के, दादी आपका बर्थडे मनाने की आपकी इच्छा है क्या? दादी आश्चर्य, बर्थडे मनाने की इच्छा क्या होती? हमने दादी ने खुद हमारा बर्थडे मनाओ किसी को नहीं कही। और मेरे को एक दिन बुला करके, मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप हमारा बर्थडे नहीं मनाओ, जो कुछ हो गया हो गया। मैंने अभी क्या जवाब दे, बड़ी दादी है, वो संस्था की हेड भी है और अभी खुद भी कह रहे हम हाथ जोड़ता हूं, मेरे सिर पर हाथ भी रखा। मैंने बोला दादी आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, और हमारा जो करना है मेरे को 3 दिन टाइम दो। अभी तो लेटर चले गया, फोल्डर चले गया, इस समय में हमको कैंसिल करना ये बड़ी बात होती है, इसके लिए हमको 3 दिन टाइम दो। दादी ने चुप हो गया। उसके बाद में मैं जाकर के गुलजार दादी से मिला। गुलजार दादी से मिलना माना बाप दादा, और भले उस समय बाप दादा का प्रवेश नहीं होता है, परंतु व्हाट शी थिंक्स व्हाट शी डिसाइड्स इज अ डिसीसिव, ए स्ट्रांग विल पावर पड़ता है उसमें। मैंने गुलजार दादी को दिया, दादी ने मुस्कुराते हुए मेरे को कहा क्यों ठीक है, मैं दादी से बात करती हूँ। इन द मीन टाइम आई केम टू नो समबडी पीपल आर इन, आई डोंट वॉन्ट लाइक टू टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन। और जयंती बेन आकर के मेरे को बोली दादी बोलती है कैंसिल कर ले, मैं चुप रहा। बाद में बोला आप लोगों ने लंदन में दादी का बर्थडे मनाया, हम लोगों से पूछा। बॉम्बे में बर्थडे मनाए हम लोगों से पूछा, दिल्ली में बर्थडे मनाए हम लोगों से पूछा, ओआरसी में जब आपको अपना दादी समझ करके बर्थडे मनाते हैं, क्या हमारा पास दादी के बर्थडे मनाने का अधिकार नहीं है? अधिकार सर प्रयाल जी हेलो, आप जब बर्थडे मनाते दादी का किसी से पूछा नहीं, और एक तो दादी के नाम से कुछ पैसा इकट्ठा कर दिया, कुछ सामान इकट्ठा कर दिया, कुछ ये तो सेलिब्रेशन नहीं हुआ। एक संस्था का हेड है, 100 ईयर्स एज में भी इतना दादी काम करते हैं, उसका सेलिब्रेट कैसे करना, वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। अधिकार तो किसी नोटिस नोटिफिकेशन से नहीं आता है, कोई कानून बन के नहीं आता, इट इज माई मॉरल राइट, इसके लिए मुझे करना ही है, मैंने इसको बोल दिया। बहुत नहीं हैरान हो गया। बाद में फिर भी दादी ने बुलाया, दादी को बताया, दादी हम जो करना चाहते हैं वो पैसा कलेक्ट करने का नहीं है, दादी के बर्थडे मना बड़े बड़े लोग आना चाहिए, बड़े बड़े पत्रकार लोग आना चाहिए, बड़े बड़े टेलीविजन वाला आना चाहिए, तब तो उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की वैल्यू है, नहीं तो हम ब्रह्मा भोजन बना करके खिला करके कुछ सौगात एक्सचेंज करने से दैट इज नॉट अ बर्थडे। दादी ने आप जो चाहिए करो ऐसा बोल दिया। मेरे को छुट्टी मिल गई रामा, और उसके मिलने के बाद में बहुत बड़ा भव्य से हम लोगों ने कार्यक्रम किया। मैं दो दो तीन तीन हेलीकॉप्टर रखा था, वीवीआईपीज को उदयपुर व अहमदाबाद से अबरोड में उतरना, वापस उनको जाना सेम डे। बहुत मीडिया के लोगों को बुलाया, एंड दैट वाज द फर्स्ट मोस्ट वंडरफुल प्रोग्राम इन मधुबन। उसके बाद में 80th एनिवर्सरी किया, उसके बाद में हर एक समय में अलग अलग नाम से प्रोग्राम करते आए। अभी इसी बार में भी हम लोगों ने जो ग्लोबल समिट किया वो भी सक्सेस हुआ, उसमें एक ही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इधर आने वाले थे, कुछ कारण से उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, फिर भी हमारा अच्छे अच्छे लोग आए, बड़े बड़े मीडिया के लोग आए। यहाँ जो कार्यक्रम होता था हिंदुस्तान के गांव गांव में, उसका पत्रिका में प्रिंट होता है, टीवी चैनल्स में आते हैं, ये सारे कार्यक्रम बाबा ने यशस्वी पूर्वक करते आए, हम करते रहेंगे संगम पूरा। ओके,
एक बार दूर जा ताली बजा दीजिए भाई साहब के लिए, आपके जो प्रोग्राम की सफलता का सीक्रेट कुंजी यही है भाई जी, कि आप दृढ़ निश्चयी और एक बार जो अपने हाथों में जो काम ले लेते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं, और उसके लिए बाप दादा का वरदान, बड़ों का दुआएं आपको स्वतः प्राप्त होता है, ये सब हम देखते हैं। भाई जी आप जो है हमारी बड़ी दादी और मनमोहनी दीदी के साथ काफी समय बिताए हैं, बड़ी दादी जी से और दीदी जी से आप जीवन में क्या सीखे हैं जो अब तक आपको काम आ रहा होगा?
सबसे पहले मैं दादी की जीवन से मैंने देखा, दीदी की जीवन में भी देखा, मेरा यह सौभाग्य में कम से कम 40 साल मधुबन में रहने से दादी का ब्लेसिंग, दादी से डेली इंस्ट्रक्शन मिलता था और बहुत स्थान में दादी के साथ में ट्रैवल भी किया, रेगुलर फ्लाइट में, कार में, इसके सिवा हेलीकॉप्टर में, चार्टर्ड फ्लाइट में बहुत बार मैंने दादी के साथ ट्रैवल किया। दीदी के साथ भी एक दो बार ऐसे ही ट्रैवल किया और जानकी दादी के साथ भी ट्रैवल किया। उसका श्रेय तो दादी को है क्योंकि दादी मेरे प्रति दादी के बहुत अच्छे भावना, हॉनेस्ट, ट्रैंड, क्लीन, क्लियर एंड इंटरैक्टिव, हर बात को लेन देन करना, बातचीत करना, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, ये तीन हमारा क्वालिफिकेशन है। हर ब्राह्मणों का क्वालिफिकेशन है, हर ब्राह्मणों को आगे बढ़ने के ये विधि है, मैं समझता हूं। इसके लिए दादी का सहयोग मिलता रहा, निर्वेद जी का सहयोग मिलता रहा, अन्य हमारा भाई बहन, हम जो भी हम कहते हैं भैया आप लोगों एक काम करना, मैं डिस्कस करता हूँ अपनी मधुबन निवासी भाई बहनों से और उनका ड्यूटी हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार लेते हैं। उसका जब स्वयं इच्छा से काम करते हैं उसमें कोई गुंजाइश नहीं होता है और उनको जहाँ टाइमली कम्युनिकेट करना होता है, टाइमली इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, टाइमली उसको एक्ट करना पड़ता है, इतना करे तो बहुत कुछ हो जाता है। थोड़ा हम भबके से किया, अभी तो वो परंपरा आगे चल रहा है। इस साल आजादी के अमृत महोत्सव का मैं डेली मीडिया में सुनता था, आजादी के अमृत महोत्सव 75 ईयर्स का इतिहास को लेकर के जिन्होंने सैक्रिफाइस किया फ्रीडम के लिए, जिन्होंने जेल में गया, जिन्होंने आंदोलन में जुड़ा, जिन्होंने बहुत त्याग किया, उसके बाद में मैंने तो सोचा ये गवर्नमेंट का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये जनता का कार्यक्रम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम। मैं वर्तमान समय का जो कल्चरल मिनिस्ट्री है जी के किशन रेड्डी, उसे मैंने एक बार मिला, मेरे साथ दो बहने भी थे, मैंने उनको बोला उनको शाबाश आप लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर आपने कर रहे, बहुत खुशी है, परंतु आजादी के अमृत महोत्सव केवल एक फास्ट जो गत काल के इतिहास को याद करने का उत्सव बना रहे, हम भविष्य क्या बना रहे ये सोचना चाहिए, व्हाट मोटिवेशन यू गिव फॉर, ये एक सरकारी काम नहीं होना चाहिए, सरकार मददगार ठीक है करना चाहिए परंतु जनता आंदोलन होना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक इन्वॉल्व होना चाहिए। इसने बोला अच्छी बात है आप भी सहयोग करो। मैंने बोला हम कैसे सहयोग करेंगे, हमने बोला हम प्रोग्राम करेंगे उसकी आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड अबाउट देयर फ्यूचर, देयर कंट्री फ्यूचर, उसमें हम क्या कर सकते हैं क्या करेंगे उसके बारे में मोटिवेशन देना चाहिए, जो गत काल तो गया हिस्ट्री यू कैन नॉट चेंज, और उसका सैक्रिफाइस जिन्होंने किया उसका भी लाभ मिल गया हमारे लोगों को, परंतु उनको याद करते अलग बात है, उसका चरित्र पढ़ता है अलग बात है, परंतु हमारा भविष्य क्या होना चाहिए, देश का भविष्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैंने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस टॉपिक जोड़ करके मैंने कहा वी विल मेक वन फोल्डर, वी विल मेक ए कंसेप्ट, वी विल डिस्कस विथ यू। उसने बहुत खुश हो गया, दूसरा तीन चार दिन के बाद में फोल्डर बना करके देखा है वो बहुत खुश हो गया। मैंने बोला इसमें सरकारी भागीदारी होना चाहिए, वी वर्क टूगेदर, हम दोनों साथ साथ में काम करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपका भी साथ, उसके लिए आपका परमिशन चाहिए, वो लोगो यूज करने के लिए परमिशन चाहिए। उन्होंने पटापट से एक सेक्रेटरी को बुला करके इसका पूरा सहयोग दो और ये सबका परमिशन है। देन उसने खुद देखा अगर आई विल ब्रिंग यू प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, और ड्रामानुसार उसका इनॉग्रेशन के लिए भी उन्होंने कन्विंस किया, January 20 उसका लॉन्चिंग हो गई, उसका भी लंबे हिस्ट्री है। तो मैं कहने की भाव ये वी आर वर्किंग टूगेदर। उसके बाद में एक रिपोर्ट बना करके मैंने उसको प्रॉमिस किया था वी आर गॉट अबाउट 8,000 सेंटर, हम 15,000 कार्यक्रम करेंगे, हमारे 30 प्रोजेक्ट योजना बनाए, 30 आपने देखे ना फास्ट बॉर्डर में 30 प्रोजेक्ट्स है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका कार्यक्रम करेंगे अलग अलग। और मैं एग्जैक्टली आफ्टर 3 मंथ्स वी हैव मेड वन कंपाइलेशन एंड ए बुक, वो बुक उनको जाकर के दिखाया, उसने कितना कॉपी ले गया, मैंने बोला करीब 10 कॉपियां मैं इसको प्राइम मिनिस्टर को देंगे, जो सरकार नहीं कर सकते वो आप काम किया। इट वॉज हिज वर्ड, सरकार जो करना चाहिए वो आप लोगों ने काम किया। मैंने बोला सरकार तो सरकार है, ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन तो डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, परमात्मा का इंस्टीट्यूशन है, परमात्मा हमारा भविष्य, हमारा देश का भविष्य, विश्व का भविष्य को जानकार है, वो हमारा को गाइड करता है, मदद करता है और ब्लेसिंग देता है। वो कार्य सफल होना ही था। उसके बाद में उन्होंने और भी खुश हो गए, इसके बाद में कई चीजें लेट इट बी सीक्रेटली।
जी जी भाई साहब, आप भाग्यशाली हैं भाई साहब, साकार बाबा से मिले, दादियों की पालना में पले और अब एक सुंदर विजन को लेकर के आप चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं भाई जी कि हर एक का एक प्रेरणा स्रोत होता है, हम लोग भी ज्ञान में आए तो कभी हमारी दीदियां हमारी प्रेरणा स्रोत है, या दादियों का जीवन कहानी पढ़ते हैं तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा आपके जीवन में प्रेरणा स्रोत कौन है?
ये तो बाप दादा का रोल अलग गया। जीवना स्रोत मेरे अपने जीवन के लिए एक तो दादी प्रकाशमणि जी फर्स्ट नंबर
जी,
सेकंड जो है हमारे लिए उन दिनों में निर्वैर भाई जी, मैंने हर बात में उन्हें डिस्कस करते, तीसरा जो है हमारे जगदीश जी का बहुत बड़ी योगदान है, रोल है, गाइडेंस भी है, त्याग और तपस्या भी है। और सबसे पहले मुझे उन्होंने सहयोग दिया था, वापस दिल्ली में मैं कुछ दिन समय रहा, फर्स्ट फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड का कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में बीडी जत्ती वाज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बीडी जत्ती को मैंने जब यह हिंदू कर्नाटक में मिनिस्टर था फूड एंड सिविल सप्लाई तब जानता हूं, उसके बाद में चीफ मिनिस्टर बना तभी भी उस हमारा संस्था में आया, उसके बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर बना तभी भी आया, गवर्नर बना तभी भी आया, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट बना, तब दिल्ली में भी ज्ञान भवन ने कार्यक्रम किया था, उन दिनों में जगदीश जी ने कहा आप उसका टाइम लो, उसको इन्विटेशन देना प्रोग्राम बुलाने का, क्योंकि उनकी पर्सनल असिस्टेंट जो है जो बेंगलोर में था फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर के टाइम, द सेम पर्सन वॉज द इसका प्राइवेट सेक्रेटरी रहा वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट में। तब हमें अपॉइंटमेंट पूछा, उन्होंने ऑटोमेटिकली हमारा संस्था से जुड़े नहीं परंतु विश्वास था, उन्होंने टाइम दे दिया। देन हम गुजार दादी जगदीश जी मैं सर दूसरे एक बहन को लेके गए, निमंत्रण दिया और उसने बहुत सहर्ष से स्वीकार किया और विज्ञान भवन में फर्स्ट बिग प्रोग्राम एन यूनिक प्रोग्राम वीवीआईपी का प्रोग्राम हुआ, ही केम फॉर द इनॉग्रेशन और दैट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट उनका। उससे उसके बाद में कंटिन्यूटी में बहुत हुई है, अभी भी हो रहा है, और इस साल का आजादी के अमृत महोत्सव का और भी कुछ एक्टिविटीज है हम कर रहे हैं इसी प्रकार का। मैं जोड़ मीडिया का भी बहुत मुझे मदद था, मीडिया के लोगों से मेरे पर्सनल कांटेक्ट भी है, उसके सिवाय वी टेक केयर ऑफ देयर मेनी क्या बोलते फेलिसिटेशंस करना, उनको सम्मान करना आदि, हर टाइम में मैं इसका ऑर्गेनाइज करता हूँ, इन दैट वे वी गेट अ लॉट ऑफ कोऑपरेशन।
जी जी भाई साहब, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोग्राम एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं, जैसे अभी आप बताए कि आजादी का स्वर्णिम महोत्सव और स्वर्णिम भारत की ओर, इसके अलावा कोई बड़ा प्रोग्राम का आपके मन में चल रहा होगा तो आज हमारे भाई बहनों को बता दीजिए।
मेरा एक इच्छा है, अभी तो एक तो ये टेक्नोलॉजी का युग है, विज्ञान का साधन सामग्री है, उसको उपयोग करते हुए शांतिवन में दादी प्रकाशमणि जी पार्क में एक अक्वा लेजर शो कम 3D मैपिंग ये प्रोजेक्ट चल रहा है, कंप्लीशन में है, अभी 2-3 मास के अंदर उसको शुरुआत करेंगे। एक बहुत अच्छी एक चीज है, आपने सभी देखा होगा, जो स्वामीनारायण का गांधीनगर में एक लाइटन सोन का है, और उसका दूसरा जो है दिल्ली में उन्होंने बहुत सुंदर बनाया वो भी, परंतु उनका थीम अलग है एक कहानी के आधार से। हमारा तो हिस्ट्री है, हमारे पास ज्ञान है, हमारा तो तीनों लोक तीनों कालों का नॉलेज है, उसको उस मापिक प्रस्तुत करेंगे तो लोगों को विद इन ऑफ एन आवर दे शुड गेट इम्प्रेस, दे शुड गेट एनलाइटनमेंट, दे शुड फील दैट इज द हाईएस्ट ट्रूथ दैट वी हैव टू प्रैक्टिस इन लाइफ। वो बात लेकर के चल रहे हैं। इसका सिवा और भी एक है, इट मे टेक टाइम, क्योंकि अभी तक हमने दुनिया में म्यूजियम आदि जो बनाया ये तो गतकाल का है, भविष्य का देख करके कोई म्यूजियम नहीं, इसको म्यूजियम नहीं कह सकता है। एक विजन, एक प्लान, एक सोच कहो, एक ऐसा कुछ हमारा भबके से करने का विचार है। पहले हम लोग सोचा था शांतिवन में करने के, उधर अभी थोड़ा उसका बीच में कोरोना आ गया, बीच में बहुत कार्यक्रम ठप गया, अभी थोड़ा स्लोली दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड एक्टिविटीज, हम भविष्य में उसका एक भबके से जो बनाएंगे, एक व्यक्ति एक राउंड होके कर उधर टर्न होके आ जाए, इसको अपवित्रता से मुक्त होकर के पवित्रता के रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत हो जाना चाहिए, गलत चीज को गलत कहने के लिए हिम्मत होना चाहिए, और परमात्मा के प्रति उनको भावना श्रद्धा विश्वास और संबंध जोड़ना चाहिए। वी कैनॉट डू 7 दिन का कोर्स करते एक व्यक्ति का, आधा घंटे में उनका लाइफ एनलाइटनमेंट होना चाहिए, आधा घंटे में उनके लाइफ में एक बड़ी डिसीजन मेकिंग पावर उनको आना चाहिए, ऐसा कन्विंसिंग हमारा पास साधन कर सकता है बन सकता है इस समय में। मैं सोचता हूँ उस दिशा में, परंतु अभी उसका और भी, मैंने पहले सोचा था एजुकेशन में वी शुड ब्रिंग द रेवोल्यूशन, हमारा पाठ्यक्रम में होना चाहिए, क्योंकि अभी तक पाठ्यक्रम में हमारे ज्ञान नहीं, इतने बड़े ज्ञान इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, और रामा ने उसको एसएस दिया, पहले 8 यूनिवर्सिटी के साथ MOU किया, और साउथ में अन्नामलई यूनिवर्सिटी के साथ, दैट इज अ बिग हिस्ट्री। उसके बाद में अभी वी हैव मोर देन 20 यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने एक MOU किया, और कम से कम 10 लोगों को हम लोग ऑनररी डॉक्टरेट है, फर्स्ट तो दादी को दिया, सेकंड जानकी दादी को दिया, थर्ड गुलजार दादी को दिया, फोर्थ रतन मोरी दादी को दिया, फिफ्थ में किसी को मांगने नहीं गया, रांची यूनिवर्सिटी वाले ने दिया, उसके सिवा गुलजार दादी को 2 यूनिवर्सिटी वालों ने दिया, इस साल हमारा दादी तनिर्वेद जी और मुन्नी बेन को डॉक्टरेट डेला यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटीज आर नाउ एक्सेप्टिंग दिस इज अ बिग यूनिवर्सिटी, और इनको इसके लिए एक समन्वय हो गया, हर व्यक्ति आजकल ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुटना चाहते हैं, परंतु उनको शिक्षा कैसे देना, पाठ्यक्रम कैसे होना, उनका थॉट लैब कैसे बनना, और उनका प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होना, ये सारी बातों का करते आए। अब नाउ द यूनिवर्सिटीज आर कमिंग टू, ये बड़ी बात है हमारा अपने दृष्टि से, और इंडस्ट्रीज तो आ ही रहे, और यूनिवर्सिटी जहां ज्ञान है वह अज्ञान समाप्त हो जाएगा, ये ऐसी हमारा सोच है। ओके
जी भाई साहब, बस एक छोटा सा प्रश्न और है भाई साहब, आप इतना बिजी रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अपने लिए ज्ञान योग के लिए कब टाइम निकालते हैं?
अभी हमारा तो दादी से एक बहुत बड़ी बात है मैंने सीखा, मैंने उनके साथ बहुत जगह में यात्रा करता था, बहुत जगह नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह में गया, विदेश में भी गया, उसमें एक बड़ी क्वालिफिकेशन में दादी से सीखा, नंबर 1 दादी डेली 4 टाइम्स मुरली पढ़ती थी, 1 टाइम सुबह अमृत वेले दादी चाहे हिस्ट्री हॉल में चाहे वो मेडिटेशन हॉल में योग कराती थी, योग कराने के बाद में दादी कमरे में जाकर के 1 कप चाय और उसके साथ मुरली पढ़ करके क्लास में आती थी, पूरा पढ़ के आते थे, क्लास में आकर के क्वेश्चन आंसर करते थे, मुरली खुद पढ़ते थे, आप सभी ने देखा होगा, थर्ड टाइम दादी शाम के टाइम में यीशु दादी की जो ऑफिस है, दादी का ऑफिस है, उधर बैठते थे। उनकी बहनें चाय वगैरह लेकर के आती थी, दादी उसी टाइम में भी मुरली पढ़ती। और चौथा टाइम हम दादी के साथ ट्रैवल कर रहे थे जयपुर के लिए। जयपुर का गवर्नर डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी दादी जी को बुला करके उधर एक सम्मान का कार्यक्रम राजभवन में रखा। उस दिन किसी न किसी कारण से ट्रेन लेट हो गया, 9:30 बजे आने के बजाय 11:30 बजे ट्रेन है। उन दिनों में कोई साधन नहीं था, इधर से फ्लाइट भी नहीं है, कार तो बहुत लंबे रोड, अभी तो अच्छा है, उन दिन में अच्छा भी नहीं था। देन ट्रेन बोर्डिंग हुआ, यू वर इन द कोपे, कोपे में फर्स्ट एसी में 4 लोगों का एक, और मोहिनी बहन भी सो गया, मैं ऊपर जाकर के बैठा, मुरली बहन और दादी नीचे बैठी है और बैठ करके मुरली पढ़ रही थी। 11:30 बजे मुरली पढ़ रहे, मेरे को आश्चर्य हो गया, दादी आप सो जाओ ना दादी, क्यों अभी भी बैठे, सारा दिन बिजी रहते हैं, ट्रेन भी लेट हो गया, आपको जिंदगी में बाबा, आप बाबा का साकार बाबा मुरली सुने, कुछ भी सुने इतने समय से। और दादी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, मुरली पढ़ के सोती हूँ, 10 मिनट में मेरा सारा दिन का दिनचर्या बाबा को बुद्धि से बता करके समर्पित भाव से सो जाता हूँ, ऐसा लगता है मुझे बाबा का गोद में सोए। एक बच्चा कैसे एक माँ की गोद में सोते हैं, ऐसे में बाबा का गोद में सो गए, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो बात। और दूसरा, एक बार हम लोग दादी को बेंगलुरु टू मैसूर जा रहे थे, ट्रेन में थे हम लोग, ट्रेन में तो पुराने में तो ट्रेन तो बहुत लेट होता था, आजकल तो फिर भी टाइमली चलता है, उधर बहुत हम लोग बोर्डिंग हो करके 11:30 बजे लगभग ट्रेन में सो गए, सुबह 5 बजे वो ट्रेन मैसूर पहुंच रहा था। दादी उससे पहले उठ करके ट्रेन में भी योग कर रहे, मुझे भी शर्मिंदा आया, मैं भी उठ करके दादी से, दादी हमने लेट सोया, सारा दिन अब बिजी रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, अभी तो और भी 30 मिनट है, आप सोचा हो ना दादी, बाद में दादी ने बहुत अच्छी बात बताई। दादी ने बोला हम कहीं भी जगह जाते हैं, अब उठ तो 4 बजे हो, सुबह 3 बजे हो, 5 बजे हो, दादी का नाम लेकर के उठ करके इतना खुशी मना रहे, दादी आ रहे, दादी आ रहे, दादी आ रहे, वो लोग जाग करके मुझे याद करते, मैं जाने से पहले उनको सकाश दूं, उनको शक्ति दूं, उनको वाइब्रेशन दूं। व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंकिंग। हम कई जगह में जाना चाहते हैं, देखते हैं उधर जाके, ऐसा नहीं, दादी जाने से पहले उन लोगों को भी सकाश देना, इससे ये सिद्ध होता है अपना साइलेंस पावर से किसी को भी सकाश दे सकते हैं, साइलेंस पावर से किसी को भी प्रेरित कर सकते हैं, किसी को भी अपने बोझ उपस्थिति का आसान कर सकते हैं, रियलाइज करा सकते हैं। इसके लिए दादी के अंदर एक कंसेप्ट था, सेवा केवल उसी टाइम में भाषण करना, उसी टाइम में मदद करना, वो नहीं है। बिफोर वी रीच, बिफोर वी कंप्लीट दैट असाइनमेंट, डिवाइन असाइनमेंट, मैं उनको वाइब्रेशन दूं, ये तो काम कर सकता है हमारा हाथ में, इसके लिए कोई दूसरों का मदद भी नहीं चाहिए।
भाई जी ने आज हम सबको बहुत बहुत नई
कंसेप्ट हम सबके अंदर होना चाहिए।
जी 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 भाई जी,
इसलिए प्यार से बुला रहे हैं तो हम उस वक्त उस कार्यक्रम में जाना होना ही चाहिए, परंतु वी कैन गिव ब्लेसिंग्स, वी कैन गिव सकाश, वी कैन इंस्पायर देम, वी कैन मोटिवेट देम, वी कैन, उनकी कोई तकलीफ है, कंफ्यूजन है, उसको आपका वाइब्रेशन से, आपकी ताकत से, आपकी स्नेह से उनकी समस्या को समाधान कर सकते।
जी जी भाई जी,
कर सकते नहीं कर सकते परंतु हम अडिक्ट नहीं हुआ उसका प्रयोग नहीं किया, परंतु दादी ये प्रयोग करती थी एंड दैट्स व्हाई शी वाज द मोस्ट सक्सेसफुल।
जी 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 भाई जी, अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे मध्य आए, हम समझ सकते हैं भाई जी का शारीरिक स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी ब्राह्मण परिवार से इतना प्यार है और कई चीजें जो हम नहीं जानते थे, नहीं समझ पा रहे थे, ऐसी सब बातों को क्लियर किया। आप अपना बहुत बहुमूल्य और कीमती समय निकाल करके भाई जी सभी के तरफ से, सभी भट्टी वालों के तरफ से आपका एक बार पुनः बहुत 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 धन्यवाद।
ओम
शांति। अभी हम सभी दो मिनट
बहुमूल्य किस चीज को, हमारा भाई बहनों का समय, उनका शिक्षा, उनका उपस्थिति, इससे तो बड़ा अमूल्यवान कोई है ही नहीं।
जी जी जी,
एक एक का जीवन की, एक एक का समय, एक एक का त्याग, एक एक का बलिदान, एक एक का दृढ़ विश्वास, उसके बीच में हमारा छोटा सा है सहयोग।
जी,
ओके, ओम शांति।
दो मिनट पापा को याद करते।